नारायण 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 सब बोलो नारायण। कागज में आया है कि शरीर से अहंता का त्याग सूम तरीका है, त्याग का सूम तरीका बार बार छोड़ते ही फिर पकड़ी जाती है। इसमें एक सिद्धांत की बात बता रहा आपको, ये छोड़ने से नहीं छूटता है, छोड़ने से पकड़ा जाता है। ये थोड़ा तरीका है एक विलक्षण। हम चिंतन आत्मा का करते हैं ना, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन से अनात्म चिंतन दृढ़ होता है, ऐसे छोड़ने से दृढ़ होता है। मन को एकाग्र करते हैं, एकाग्र करते हैं, जितना मन को ज्यादा एकाग्र करते हैं उसको मन का चंचल होता है, चंचलता की दृढ़ता होती है। यदि प्रश्न बात है तो शरीर में अहंता का त्याग करने से अहंता दृढ़ होती है। ये अभ्यास करते हैं, अभ्यास की चीज तत्व तो नहीं मिलता है, अभ्यास से कोई तत्व को प्राप्त करना चाहे असंभव बात, तत्व तो नहीं मिलेगा। तो क्या करे, शरीर का अंतर का त्याग करना हो, त्याग करने का उद्देश्य है हमारा, त्याग करने का उद्देश्य है, ऐसे मन को एकाग्र करने का उद्देश्य है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना तत्व का एक अशाश्वत उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो बनता है, उद्देश्य बन करके क्रिया न करने से नहीं होगा, क्रिया करने से सिद्ध नहीं होगा। जैसे शरीर में अहंता का त्याग किया तो अहं का त्याग करने से अहंता दृढ़ होती है। क्यों होती है कि पहले अहंता का त्याग करते हैं तो अहंता को पहले मानते हो ना, तभी त्याग करते हो। अगर अहंता नहीं मानते त्याग किसको करते, तो त्याग करने से अहंता दृढ़ होती है। हमारी दृष्टि से हम दृढ़ कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, तो इसको त्याग करना है, त्याग करना है, तो अहंता दृढ़ होती है, मजबूत होती है। नहीं
पहला आपने बताया ना अभी कि पहला उद्देश्य,
हाँ उद्देश्य क्या कहा है, देहाभिमान नहीं रहे, कि देहाभिमान ही नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन थी आता है कि देहाभिमान ही के सब दोष पैदा होते हैं, जितने दोष आएंगे सब देहाभिमान के आएंगे। अहंकार रूप एक बहेड़े का वृक्ष है, तो बहेड़े के वृक्ष में कलजू रहता है, तो अहंकार रहेगा वहाँ सब आश्रय संपत्ति आएगी, जितनी आश्रय संपत्ति है सब अहंकार की आश्रित रहती है, और अहंकार का त्याग करते हैं तो अहंकार दृढ़ होता है। ये दूसरी बात, तो पहले मानो देहाभिमान का त्याग करना ये विचार रहता है, उद्देश्य होता है, उद्देश्य में दृढ़ता नहीं होती है,
उद्देश्य में
दृढ़ता नहीं होती,
अहंता दृढ़ नहीं होती
ना, उद्देश्य में दृढ़ता होती है। वो अहंता है वो हमारा स्वरूप नहीं है, मैं हूं। अब इसमें ध्यान दें, आप और लोग बोलोगे जो मेरे को मदद मिलेगी और बात बताऊंगा। जैसे मैं हूं, ये दो शब्द हुए, दो अक्षर हुए, एक मैं एक हूं। इसमें मैं चीज है वो प्रकृति का अंश है, हूं है ये चेतन का अंश है, मैं हूं ये चिद्र ग्रंथि है। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिन नहीं। जड़ चेतन ग्रंथ क्या है कि अहम तो है प्रकृति और हूं है पुरुष परमात्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमर सर शुक्राशी, ये हूं है। और मैं है सो माया बस भयो गुसाई, बजो कीर मरकट की नाई। तो माया बस हो गया, माया का बस हो गया, हूं के बस में हो गया, तो मैं हूं एक बन गया। अब मैं में जो विकार है वो मैं में दिया, अपने में है में दिखेगा, हूं में दिखेगा। विकार होता है अहम में, स्वरूप में विकार नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। सभी अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौनते न करोती न लिप्यते। शरीर में स्थित कोई कर्ता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। अब कर्तापण का त्याग करोगे तो कर्ता दृढ़ हो गया, कर्तापण है नहीं स्वरूप में। अब कर्तापण को छोड़ोगे तो कर्तापण का पहले आरोप करोगे, सत्ता मानोगे, तभी तो त्याग करोगे। कर्तापण की सत्ता ही नहीं मानो त्याग क्या करोगे। इस बार त्याग करे जो जो सत्ता आएगी उसकी। इस बात से ये अभ्यास है, तत्व की प्राप्ति में अभ्यास कारण नहीं है। अभ्यास के द्वारा एक स्थिति बनती है, जैसे अभी शरीर में स्थिति है, ऐसे एक स्थिति सूक्ष्म शरीर में हो गई, कारण शरीर में हो जाएगी, उसमें स्थिति बनेगी अभ्यास से। तत्व स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास किसका नाम है कि उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाएगा उसका नाम अभ्यास है। प्रयत्न किया जाएगा वो अंत तक भी कैसे होगा, अहंता से ही होगा। प्रयत्न जितना करोगे, उद्योग जितना करोगे, प्रकृति के संबंध बिना कहीं नहीं सकते। स्वयं चेतन में कोई क्रिया नहीं है, चेतन में कोई पदार्थ नहीं है, प्रकृति नहीं है। इस वास्ते प्रकृति लाते ही होगा, अभ्यास करो बिना प्रकृति के नहीं होगा। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये प्रकृति का अंश लिए बिना कोई अभ्यास होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। खूब विचार करो, विचार करके फिर प्रश्न करो। तो अभ्यास होगा जड़ के संबंध से ही होगा, और जड़ के संबंध से अभ्यास करेगा वो जड़ का त्याग कैसे करेगा। क्योंकि बिना चेतन जड़ की सहायता के अभ्यास होगा नहीं, जड़ की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो सहायक होगा उसका त्याग कैसे होगा, सहायक को ग्रहण करना होगा, तो जड़ का साथ में रखेगी। सारी बात कहता था, आज भी कहता हूँ वही बात, कि जो वेदांति है ना तकलीफ देखे गोरी वो करेंगे, हम करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हमारी बात ही काटा कर रहे थे राम ने बात। तो अभ्यास करने में क्या होता है, अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है। चाहे श्रवण करो, चाहे मनन करो, चाहे निर्ध्यास करो, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा ही। क्रिया तो होती है सूक्ष्म की प्रधानता, चिंतन मनन से हो गया सूक्ष्म की प्रधानता, और समाधि होती है काम से की प्रधानता। तो शरीर साथ में लेना पड़ेगा, बिना शरीर का समाधि ले बोले। इस वजह से समाधि से, समाधि में स्थिर होने से फिर परमात्मा प्राप्ति क्यों हो जाती है, कि उद्देश्य उसका परमात्मा का रहता है। इस बात से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, इनमें तत्व नहीं है। श्रवण में, मन में, निर्ध्यासन में, समाधि में शक्ति नहीं है इनमें। शक्ति इसकी मांग रहते हैं, इसकी शक्ति है सभी, इनमें शक्ति नहीं है। शक्ति तो चेतन में है, वो चेतन में है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सभी असंभव बात है। जन्म का भी जड़ तो प्रति क्षण परिवर्तनशील है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। केवल परिवर्तन का नाम ही प्रकृति है, हरदम चलती रहे, हरदम बदलती रहे, चाहे स्वर्ग हो चाहे प्रलय हो, चाहे स्वर्ग महासर्ग हो चाहे महाप्रलय हो, इसमें तो बदलती ही रहती है। तो प्रकृति में बदलती रहती है तो शरीर नहीं बदलेगा, स्थूल नहीं बदलेगा, सूक्ष्म नहीं बदलेगा, कारण नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। अरे इनको लेकर करोगे वो अभ्यास से कैसे होगा, इनकी सहायता से लोगे तो सहायक करना से कैसे होगा। जो सहायता लेता है वो सहायक वस्तु का नाश कैसे करेगा, सहायक तो सहारा है उसका। इस वास्ते बिना जड़ के सहारे होगा नहीं। तो अब सही के चीज बीच में तो अहंता है, ये पूजा है कि उसका त्याग करते हैं तो त्याग होते नहीं, त्याग करते नहीं होगा त्याग। त्याग करने से शरीर की अहंता दृढ़ होगी, त्याग नहीं होगा। अब तुम्हें त्याग कैसे करे, आप आपका उद्देश्य हो कि शरीर में जो मैं मेरा पद है ये हट जाता है, ये आपका लक्ष्य हो, लक्ष्य हो कि आप चुप हो जाओ, भीतर से कुछ भी चिंतन मत करो। अगर आप रह सको तो भले आधा मिनटी हो, 5-7 सेकंड हो, पर कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से ही करते तो अभिमान दूर होता है, करते तो अभिमान है, व्याभिमान है, तो करते तो अभिमान, क्रिया करते हुए करते तो अभिमान दूर कैसे होगा। को कुछ भी करोगे तो कर्तापन तो रहेगा ही साथ में, कर्तापन का त्याग कैसे होगा। अरे कर्तापन है वही व्याभिमान है, तो करने में करता रहेगा, करना कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है, करना है ही नहीं। आत्मस्तम मन कृष्व न किंचन किंचित, एक परमात्म तत्व तो है परिपूर्ण, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह, जैसे समुद्र में गहरा डुबकी लगावे तो बाहर भी बाहर भीतर समुद्र जल है, स्वयं में जल है और बाहर भी जल है, ऊपर भी जल है, नीचे भी जल है, चारों तरफ जल ही जल है, केवल जल जल है। इस तरह से परमात्मा तत्व है वो है, ऐसे ही विचार किया गया परिपूर्ण सम है। अब है उसमें कुछ भी क्रिया करोगे तो शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, तो कुछ भी न लेकर चुप हो जाए। अब चुप होते ही भीतर से कई तरह के संकल्प विकल्प होंगे। अब खास क्या करना है साधक के लिए कि संकल्प विकल्प के साथ में मिलना भी नहीं है, उनको अच्छा भी नहीं समझना है, उनको बुरा भी नहीं समझना है, उसको हटाना भी नहीं है, उसको रखना भी नहीं है। ये बात है खास, ना संकल्प को हटाना है, ना संकल्प को रखना है, ना संकल्प को बुरा समझना है, ना भला समझना है। ये समझने से समझ जुड़ेगा, भला समझो तो समझ रहेगा, बुरा समझो तो समझ रहेगा, हटाना है तो संबंध जुड़ेगा, और नहीं हटाना, नहीं करना है चिंतन तो चिंतन चिंतन के साथ संबंध जुड़ेगा। भगवान ने अवतार लिया तो अवतार के साथ प्रेम किया उनका भी कल्याण हुआ, और बैर किया उनका भी कल्याण हुआ, इसको नहीं हुआ उनके लगे ही हुआ। इसलिए से इनके साथ बैर करोगे तो ये चिपकेगा, स्नेह करोगे तो चिपकेगा, अच्छा करोगे तो चिपकेगा, बुरा समझोगे तो चिपकेगा, एक साथ होगा। अब इनसे तटस्थ हो गए न किंचन चिंतित, तो उद्देश्य आपका वो होगा अब कुछ भी चिंतन न करें। तो कौन से चिंतन न करने से एक ताकत पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है स्वाभाविक, वो भगवान की देन है, उसमें उद्योग नहीं है, स्वतः पैदा होती है। जैसे बोलते बोलते तो बोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर बोलने से हो गई। मेरे व्याख्यान दिया हुआ है ऐसे, जैसे ये बोलते थे आवाज नहीं निकले, ऐसी मेरी शक्ति हुई हुई है, मैं बहुत बोला हूँ, तो ऐसी शक्ति हो जाए उस समय फिर आप बोलोगे तो शक्ति नहीं होगी, फिर चुप जाओ और कुछ भी चिंतन करो, बोलने की शक्ति आ जाएगी। चलते 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 इतना चले कि चलता गिर पड़े, चल ही नहीं सके, वो गिर पड़े तो पड़े पड़े कुछ चलने की शक्ति आ जाएगी। ऐसी कोई क्रिया करो, क्रिया करते 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 खत्म हो जाने पर फिर क्रिया की शक्ति पैदा होगी। तो जितनी शक्ति होती है निष्क्रिय से होती है, क्रिया करने की शक्ति निष्क्रिय तत्व से होती है, तो ब्रह्म जो परमात्मा है उससे अनंत शक्तियां पैदा होती है। अनंत शक्तियों को अपारी नहीं, अनंत शक्तियां पैदा होती है, परंतु होती है उस स्थिर तत्व से। तो इस वास्ते स्थिर में स्थिरता हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, करना कुछ है ही नहीं, सिद्धांत से बोलेगा करना हमारे को है ही नहीं, तो करना है ही नहीं, मैं कर्तृत्व का त्याग है, करना है ही नहीं, मन नहीं करना है ये जोर लगाओगे तो नहीं करने के साथ संबंध हो जाएगा। जोर नहीं लगाना है, उपेक्षा उदासीन, विरोध नहीं करना, विरोध करने से समझ होता है, राग करने से समझ होता है, द्वेष करने से समझ होता है, असहमत होने से समझ होता है, असहमत होने से भी इसका नहीं साथ नहीं करना तो समझ होता है। तो करना न करना दोनों से ही है, तो जाए नहीं बता से कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं अकर्षण, नशा से स्वरूप होते सुख से दर्श प्राश्य नहीं तो करने से मतलब है न करने से मतलब है न किसी प्राणी के साथ संबंध है तो करने और न करने दोनों से सच्चा सूर्यास करना ही नहीं है न करना भी हट नहीं करना है चुप हो जाए चुप होते ही स्वरूप में स्थिति होगी और कहां स्थिति होगी करने से प्रकृति के साथ संबंध होगा कुछ भी न करने से नींद आवेगी अथवा उसकी स्त्री की संक्रिया संबंध नहीं होगा तो नींद आए वो तो ठीक नहीं है पर नींद में एक ताकत मिलती है नींद में भी ताकत मिलती है अक्रिय में ताकत मिलती है सुबह उठो तो उस समय में शरीर की मन बुद्धि इंद्रियों की एक शक्ति मालूम देगी जिसमें कार्य बड़ा सुंदर रूप से होगा तो नींद में पड़े रहने से शक्ति आती है स्वतः स्वभाव अब नींद आवे तो क्या होगा कि समय बर्बाद होगा वो चेतन तत्व की जागृति नहीं रहेगी फिर सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी सा पड़े आत्मसंयम योगाग्नो जुबती ज्ञान दीप्ति थे ज्ञान की दीप्ति रहनी चाहिए नींद में ज्ञान की दीप्ति नहीं रहेगी तो ज्ञान की दीप्ति रहे ग्लूकोज में चाहिए बस सिर ऐसे सिर उसकी उपेक्षा करे जो क्रिया हो उसकी उपेक्षा करे ऐसा मालूम हो जैसे सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है जैसे वर्षा आती है वर्षा बंद हो जाती है तो हमारे क्या जोर पड़ता है वर्षा के आने में वर्षा के न आने में हमारे को जोर पड़ता है सूर्य उदय होने में सूर्य अस्त होने में कोई जोर पड़ता है ऐसे कोई वृत्ति पैदा हो ना तो हो ना न हो ना वो राग हो ना त्वेष हो ना उस समुद्र मेरे में वृत्ति है न माने वृत्ति होती है प्रकृति में अंतःकरण में मन बुद्धि इंद्रियादि में ये सब वृत्ति है ये वृत्ति प्रकृति में है प्रकृति में स्वतः परिवर्तन होता है स्वाभाविक तो उसमें हुआ अपने को इनके राग है न द्वेष है तो राग द्वेष भी नहीं करे और मिले भी नहीं मिलना क्या कि मेरी वृत्तियां हो गई मेरे संग विगत हो गए तो ये मिल गए वृत्ति के साथ में स्वयं मिल गया तो स्वयं मिले भी नहीं और राग भी नहीं करे द्वेष भी नहीं करे हटाना नहीं है लगाना भी नहीं है करना भी नहीं है न करना भी नहीं है ऐसे हो सतर्क हो जाए तो देहाभिमान को दूर करने के लिए चुप हो जाए उद्देश्य देहाभिमान दूर करने का है
महाराज जी उद्देश्य जब देहाभिमान को दूर करने का होगा तो उस समय में जी तो रहेगा ना देहाभिमान दूर करना है
ना रहना नहीं चाहिए उद्देश्य बन गया ये उद्देश्य हमारा लक्ष्य है हमारा क्रिया नहीं है उद्देश्य क्रिया नहीं होती निष्काम कर्म होता है ना निष्काम का उद्देश्य हुआ निष्काम होना है ये नहीं होना चाहिए निष्काम होने तो स्वयं होगा मैं निष्काम हूँ तो निष्काम पड़ेगा अभिमान होगा पैदा निष्कामता एक तत्व है अच्छा है उसको प्राप्त करना है ये उद्देश्य है तो उद्देश्य हुआ वो वैसे रहा उद्देश्य की सिद्धि होती है कामना की सिद्धि नहीं होती
उद्देश्य तो अहंता के त्याग की होगी ना
त्याग की होगा
तो अहंता के त्याग की होगी इसका मतलब अहंता का त्याग नहीं हुआ है
ना अब परीक्षा नहीं करना इसकी परीक्षा नहीं करना इसका विरोध नहीं करना अगर त्याग हुआ नहीं परीक्षा नहीं करना करना ही नहीं ये अपना त्याग है तो त्याग का उद्देश्य का अर्थ क्या हुआ इसके गहरी रीति से ये समझना है कि वास्तव में शरीर में अहंता नहीं है त्याग ये करना है तो भूल से मैंपन किया है ये न रहे ये त्याग ये हुआ उद्देश्य ये न रहे तो न रहे ये त्याग करना ये उद्देश्य हुआ उद्देश्य हो गया अब चुप हो गए चुप होंगे तो क्या होगा कि आत्मसंस्थम मन कृत्व एक परमात्म सत्व परिपूर्ण है ऐसे करके और कुछ भी चिंतन न करे आत्मा का चिंतन नहीं अनात्मा का चिंतन नहीं भी एकाग्रता का चिंतन नहीं विरोध का चिंतन नहीं संचलता का चिंतन नहीं और जो वृत्ति हो उसका साथ भी नहीं उसमें मिले भी नहीं ना राग द्वेष करे ना उसके साथ मिले तो जब कोई क्रिया नहीं होगी प्रकृति का संग नहीं होगा तो स्वरूप स्थिति स्वतः होगी स्वरूप स्थिति स्वतः है स्वाभाविक पापी से पापी कसाई से कसाई भी आत्मा शुद्ध है उसमें भी आत्मा शुद्ध नहीं है। अशुद्ध अंतकरण के साथ संबंध होने से अपने को शुद्धि मालूम देती है, अशुद्धि है अंतकरण में अरे अपने मालूम देती है, पर मिले हुए से फिर वो अलग नहीं कर सकता। तो मिला रहने से अलग करता नहीं तो उद्देश्य बना सकता। उद्देश्य है भाई, ये जड़ चेतन दो चीज है, ये दो है बस। तो दो चीज है, इनका ज्ञान हुआ विवेक। उद्देश्य में विवेक जागृत रहता है, वृत्ति जागृत नहीं रहती। अब नहीं क्यों विवेक वृत्ति है, आप पहले बोले जी मैंने कहा विवेक वृत्ति है, विवेक वृत्ति नहीं है, कुछ बताया वो विवेक वृत्ति नहीं है। तो विवेक रहेगा जड़ चेतन का विवेक, ये अनादि है नित्य है। जैसे प्रकृति पुरुषम से वह विद्य अनादि उभौ, दोनों भी अनादि है, तो प्रकृति अनादि है और पुरुष अनादि है, तो इनका विवेक भी अनादि है। किस थोड़ी हुआ है, प्रकृति अलग है विशेष प्रतिभाव है, विवेक विशेष प्रतिभाव से बन रहा है, तो प्रतिभाव अलग अलग बना है। तो प्रकृति में पुरुषम चाहिए दो है, ऐसे चित्त की संतलता है, देह का अभिमान है तो देह हुआ है, देह का अभिमान हुआ तो देहाभिमान है। वास्तव अभिमान होता है उसमें चेतन का अंश होता है, और देह मानते हैं वो जड़ रहता है, तो चेतन का अंश रहता है वहां अभ्यास करोगे तो जड़ साथ में रहेगा। देहाभिमान का त्याग करने से, त्याग करने में चेतन साथ रहेगा, तो जड़ साथ में रहेगा, उसके जड़ का त्याग होगा नहीं। तो उसके बाद अपने कहना यही तो अपने रखना नहीं है, उद्देश्य होगा तो उद्देश्य को याद या बात बात नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ जाना है, उद्देश्य तो अचल होता है पर चिंतन होता नहीं है। ये तो संबंध आज कहते हैं कि परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ये नहीं होता। ब्याह होता है तो ऊपर समुद्री हो जाता है। तो क्या कारण है, कारण यह है कि शरीर शरीर के साथ संबंध होने से मान्यता वृढ़ हो जाती है। वो अब ऐसी परमात्मा की वृद्धि कैसे होगी कि अपने को शरीर से अलग मानोगे और परमात्मा संसार से अलग है, तब वो संबंध दृढ़ हो जाएगा। अथवा मेरी संसार से परमात्मा का ही है सब कुछ, तो फिर ठीक हो जाएगा। उसका विवेक भगवान की तरफ से होगा, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा, तो विवेक भगवान की तरफ से उदय होगा, वो संबंध से कर देगा। मचित्ता मत प्राणा बोधियंत पर स्वर्ण कथियंत मांग नित्यम और तुष्यंत चरम, इसमें संतोष है, इसमें रमण करते हैं हरदम भगवान में। तो रमण कर तेषाम सतत युगता नाम भजताम प्रीति को रजाम बुद्धि योगम तम, अब बुद्धि योग देते हैं भगवान, ही योग देते हैं भगवान, ये माओ के प्राप्त जाते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामी आत्म भाव उसको ज्ञान दीते भाषोता भाषोता ज्ञान दीपे न अज्ञान जम तमा नाशयामी, अज्ञान के अंधकार का मैं नाश करता हूँ। तो भगवान कर देंगे, अपने भगवान पर निर्भर, इसमें जितनी निर्भरता अधिक होगी, भगवान जाने भगवान का काम है, निर्भरता जितनी अधिक होगी उतना काम जल्दी होगा। वहां भक्ति
भगवान
समयोग समता समर्थन योग होते थे, तो उसका आश्रय है समता, बस है तो ठीक है, न है तो ठीक है, आवे तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, निंदा हो तो ठीक है, बेनिंदा हो तो ठीक, प्रश्न हो तो ठीक, अच्छा कहे कोई तो ठीक, बुरा कहे तो ठीक। अब ने उसे मतलब क्या है, कुछ लेना देना हमने क्या करना है, इससे संबंध विच्छेद होता। जैसे भगवान के साथ राग करो तो उद्धार हुआ, द्वेष किया तो उद्धार हुआ, अन्य राग है ना द्वेष ऐसे तो उनके साथ संबंध नहीं जुड़ा, उद्धार नहीं होता। ऐसे जड़ के साथ में त्याग का करोगे तो संबंध जुड़ेगा, राग का करो तो संबंध जुड़ेगा, अभ्यास करोगे तो संबंध जुड़ेगा, और उदासीन होकर तटस्थ होकर ऊपर हमेश समय समय ऊपर हमेश बुद्धि सीख दे दिया समय समय ऊपर हम, तो ऊपर सी चीज एक और है, ऊपर चीज में ना राग है ना द्वेष है, ना हटाना है ना लाना है, ऊपर हम हो गए, इसे मतलब नहीं हमें। जीवित से कृति न था न अकृति नहीं है, कस्तना अपना मतलब करने से नहीं है न करने से भी नहीं है, ऐसे सब हो जाए। क्या हो जाता स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक जो विवेक है ना प्रगति पुरुष का, उसमें स्वभाव जागृत हो जाएगा। ये बात है। अब इसका मनन करो, फिर पूछो नारायण नारायण नारायण। अब तो समय हो गया ज्यादा, इसका मनन करो, याद करो, मनन करके फिर पूछो। पूछोगे तो बहुत खुलेगा विषय ज्यादा। नारायण नारायण
राम। यह प्रवचन परम सद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक
10
अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।